उन्होंने कहा, जो होगा सो देखा जाएगा। छलांग लगाने वाले को कुछ नहीं हुआ। सच्ची भक्ति का स्वरूप। मित्रों, भक्ति ऐसी होती है, भक्ति का तरीका यही है।
भगवान से यह कहा जाता है, देवता से यह कहा जाता है, इष्टदेव से यह कहा जाता है कि आप हुक्म दीजिए ताकि आपकी आज्ञानुसार चलने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। सारे के सारे देवताओं के और उपासना करने वालों के तरीके यही रहे हैं। भागीरथ तपस्या करने के लिए चले गए और गंगा जी का और शंकर जी का आदेश पालन करते हुए चले गए।
मित्रों,
अपने लिए क्या मांगा?
कुछ भी नहीं मांगा।
शबरी को गुरु का हुक्म मिला कि सड़क पर झाड़ू लगाया कीजिए, जिससे कि जो विद्यार्थी वहां पढ़ने जाते हैं, तालाब में नहाने जाते हैं, उनके पैर में कांटे लग जाते हैं, उनसे बच सकें।
सेवा कीजिए। सारी जिंदगी शबरी सेवा करती रही, झाड़ू लगाती रही।
श्रेष्ठ काम करना भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश अगर आप पालन करते हैं तो वाल्मीकि की तरीके से, नारद जी की तरीके से, अर्जुन की तरीके से, गुरु गोविंद सिंह की तरीके से और दूसरे महान भक्तों की तरीके से, जिन्होंने चाहा कुछ नहीं वरन अपना सब कुछ सौंपा, सौंपने के पश्चात, बीज के तरीके से गलने के पश्चात हमारी चीजें बढ़ सकती हैं और उनका विकसित होना संभव है। अगर हम सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं और हरदम लेने के लिए तैयार हैं, तो हमारी भक्ति एक तरीके से मजाक बन करके रहेगी और हमारी वह भक्ति वेश्यावृत्ति कहला करके रहेगी।
वेश्यावृत्ति में नाच दिखाइए, पैसा पाइए, गाना गाइए, पैसा पाइए। मित्रों, भगवान जी के साथ हमको वेश्यावृत्ति जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। 24,000 का अनुष्ठान करवाइए, बेटा लाकर दीजिए।
अच्छा, तो यह मामला है, इसलिए तू अनुष्ठान कर रहा है?
हाँ महाराज जी,
मैं तो इसीलिए कर रहा था। बेटे, कामना सहित जो भी उपासना है वह उपासना नहीं हो सकती,
वह खालिस वेश्यावृत्ति है।
भजन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और भक्ति का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो अमुक चीज पाने के लिए, तमुक चीज पाने के लिए किया गया है। अगर कुछ पाने के लिए किया गया है तो बराबर की कीमत चुका दीजिए।
100 रुपये दीजिए।
बेटा चाहिए तो देखिए कि बेटा कितने दाम का आता है।
गुरुजी,
बेटा तो बहुत दाम का आता है। बैल कितने का आता है? बैल तो 1,000 रुपये का आता है और हाथी?
हाथी गुरुजी
6,000 का आता है। और घोड़ा? अच्छे घोड़े तो बहुत दाम के आते हैं। और बेटा कितने दाम का आता है?
गुरुजी, बेटा तो 25,000 का, 40,000 का आता होगा, 90,000 का आता होगा। तो बेटे दे, निकाल रुपया भगवान जी को और दुकानदारी कर। नहीं गुरुजी, मैं तो अक्षत चढ़ा सकता हूँ, धूपबत्ती जला सकता हूँ और 24,000 का जप कर सकता हूँ।
अच्छा बेटे, जरा यह तो बता कि यह सब तेरा सामान कितने दाम का हुआ? 24,000 पाठ कितने दाम का है?
अजी साहब, 3 घंटे रोज लगाता हूँ।
तेरा 1 घंटा कितने दाम का है? 1 रुपया, 1 घंटे की मजदूरी होती है, 3 घंटे लगाता है।
हाँ साहब, 9 दिन लगाता हूँ। चल 27 रुपये का तेरा भजन हो गया। हाँ साहब।
और क्या क्या किया?
धूपबत्ती जलाई।
कितने पैसे की जलाए? 54 की जलाए। और क्या क्या खर्च किया?
चावल खर्च किया, धूपबत्ती खर्च हुई, रोली खर्च हुई।
कितने का हुआ सब? बताता क्यों नहीं? अरे साहब,
1 रुपये का माल हो गया, 27 रुपये का तेरा श्रम और 1 रुपये का लंगड़ खंगड़ रुपये हो गए। बेटे 28 रुपये का तो रबर का गुड्डा आता है, असली बेटा 28 रुपये में नहीं आ सकता। बेटा लेना हो तो 26,000 रुपये निकाल, 26,000 रुपये का अनुष्ठान कर।
नहीं महाराज जी,
मैं तो फोकट में लाऊंगा तो फिर तेरी भक्ति कैसी हो सकती है?
यह भक्ति नहीं है, फिर क्या चीज है? यह तो जालसाजी है,
सच्चे प्रेम की कथा। मित्रों,
इसका एक और मजेदार उदाहरण है जो मुझे बार बार याद आ जाता है। आज की हमारी और आपकी भक्ति के संबंध में एक उदाहरण ऐसा ही है। एक बार ऐसा हुआ कि मजनू लैला के लिए फकीर हो गया और कहने लगा कि बस मेरा ब्याह होगा तो लैला के साथ होगा और अगर नहीं होगा तो मैं इसी तरह पागल बना रहूंगा और उसी का नाम लेता रहूंगा। लैला को मालूम हुआ कि हमारे लिए एक लड़का पागल हो गया है तो उसने दुकानदारों से कहा कि ब्याह शादी तो हमारी उससे नहीं हो सकती, लेकिन तुम ऐसा करना कि जब कभी भी ये छोकरा दुकान के सामने भूखा प्यासा दिखाई पड़े तो उसे बुला करके खाना खिला दिया करना और पैसे हमारे यहाँ से मंगा लिया करना।
जब कभी भूखा प्यासा मजनू उधर से निकलता तो दुकानदार आवाज देते, क्यों रे मजनू,
तैने कुछ खाया है? नहीं साहब, नहीं खाया है।
तो ले, यहाँ बैठकर खा ले। 4 आने 8 आने का खा लिया। दुकानदार ने उसे नोट कर लिया। महीने भर में 2-5 रुपये का जिस दुकानदार का बिल पहुँचता, लैला की यहाँ से मिल जाया करता, वह पैसे भेज देती। मित्रों,
एक दिन मजदूरों ने पूछा, क्यों रे मजनू, तू कल वहाँ बैठकर जलेबी खा रहा था, वह कहाँ से आई थी?
अरे, हमारी लैला खिलाती है।
हम तो मजनू हैं। मजनू में क्या बात है?
तुझे हमारी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। बाल बिखरे हैं, कुर्ता फटा है। ऐसे फटेहाल मजनू होते हैं।
उसने कहा कि तब तो हम भी मजनू बनेंगे और दूसरे दिन से एक और मजनू बन गया।
लंबा तिलक, लंबी माला, कंठा पहन लिया और ये बन गया मजनू।
कैसे मजनू? जैसे आप और मैं।
ऐसे ऐसे मजनू उस दुकान के यहाँ जा बैठे। लाए साहब जलेबी, लाए कचौड़ी।
उसके पास कोई पैसा या आइडेंटिटी कार्ड तो था नहीं?
फिर तो 2, 4 और 80 मजनू आ गए। मजनुओं की भीड़ बढ़ गई और सारा का शांति कुंज भर गया। साहब, हम भी अनुष्ठान करेंगे, हम भी अनुष्ठान करेंगे, आइए आइए।
फिर क्या हुआ?
उन सबके बिल बने और लैला के पास पहुँचे।
यह क्या हुआ? अरे साहब,
2000 रुपया खर्च हो गया। लैला को उसका बाप 25 रुपया महीने जेब खर्च दिया करता था। 10-15 रुपये वह मजनू को दे देती थी। 2000 रुपये का बिल देख करके वह हक्का बक्का हो गई, पसीना आ गया। मित्रों,
फिर क्या हुआ? उसने नौकरानी को बुलाया और कहा, अब क्या करना चाहिए?
2000 रुपये कहाँ से आएंगे? अब तो जेवर बेचकर रुपये चुकाने पड़ेंगे।
लेकिन आइंदा के लिए जो सही में मजनू है वही काबू में रहा आए और बाकी भाग जाएं तो अच्छा है। इसके लिए हम एक रास्ता निकाल देते हैं। लैला की नौकरानी एक कटोरा लेकर के गई और सब मजनुओं को इकट्ठा किया। उसने कहा कि तुम लोगों को मालूम है कि नहीं, क्या है, लैला सख्त बीमार है।
अरे,
लैला बीमार है तो हम कैसे जिएंगे? उसने कहा कि अगर लैला को जिंदा रखना चाहते हो तो बैठ जाओ।
हाँ, जिंदा रखना चाहते हैं तो एक तरीका है, मैं एक कटोरा लाई हूँ।
डॉक्टर ने कहा है कि एक कटोरा खून चाहिए जो लैला को चढ़ाया जाएगा। आप एक कटोरा खून दे दें तो लैला अच्छी हो सकती है। जो नए मजनू थे उन्होंने देखा कि यह तो आफत आ गई। जरा सा खून होता तो अलग बात थी, पर यह तो कटोरा भर करके खून मांग रही है।
उन्होंने कहा, भाई
मैं तो थोड़ी देर में आता हूँ। कोई ना बहाना बना करके, कोई पेशाब के बहाने, कोई पानी पीने के बहाने सब मजनू चले गए।
मित्रों, केवल एक मजनू बाकी रह गया।
सबके जाने के बाद जब नौकरानी वापस जाने लगी तो असली मजनू ने कहा, लैला के लिए खून चाहिए तो मेरे जिस्म में 6 कटोरा खून है। एक कटोरा खून तो तू अभी लेकर जा सकती है, 5 कटोरा खून अभी और शरीर में बाकी है। नंबर से आती रहना और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे रक्त की एक एक बूंद ले जाना। उसने सड़क पर पड़ा एक पत्थर उठाया और अपने सीने को चीर डाला और खून दे दिया।
खून लेकर बांधी चली तो उसने कहा, फिर से आप आएंगी ना? उसने कहा, अभी नहीं आऊंगी। बांदी ने ड्रेसिंग कर दी, खून बंद हो गया। बस वही एक असली मजनू था।
आपने सुना होगा कि बाद में लैला और मजनू का ब्याह हो गया था।
आत्मसुधार है भजन। मित्रों,
खून देना, सेवा करना, अनुदान देना भक्ति की निशानी है।
भज सेवायाम।
भजन जिस शब्द से बना है वह मनोकामना पूरी करने के अर्थ में नहीं बना है, वरन सेवा के अर्थ में बना है, परमार्थ के अर्थ में बना है, आत्मशोधन के अर्थ में बना है।
मित्रों,
यह देव भावना और देवबुद्धि अगर आपके भीतर पैदा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ेगा? आपको देवताओं की कंपनी में भर्ती होना पड़ेगा। अगर आप देवताओं की कंपनी में भर्ती हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए?
आपकी रीति नीति में क्या फर्क आना चाहिए?
यह हम आपको पंचोपचार की प्रक्रिया के माध्यम से समझाते हैं। पंचोपचार की प्रक्रिया क्या है? देव पूजन है। देवताओं की स्थापना करने के साथ साथ आपको देवताओं का पूजन करना चाहिए, जैसा कि हम आपको कराते हैं। 45 मिनट की उपासना में हमने आत्मशोधन के साथ साथ पूरे के 2 अध्याय देव पूजन पर लिखे हैं। देव पूजन की विधियां बताई हैं, तरीका बताया है। उसमें 5 चीजें ऐसी हैं जिसे यदि आप काम में लाएं तो देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे।
देवता पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे और देवता की समीपता का, देवता की उपासना का पूरा पूरा लाभ आपको मिल जाएगा।
पंचोपचार में क्या क्या है? अरे भाई,
वही है, पाद्यम समर्पयामी, अर्घ्यम समर्पयामी, धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामी, यही सब चढ़ा दिया करें तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ महाराज जी, यह तो बड़ा सस्ता तरीका निकल आया।
रोजाना कितने का खर्च आएगा?
अरे बेटे,
इसमें क्या रखा है, चम्मच से पानी डाल दिया कर, 4-6 चावल के दाने डाल दिया कर, एक धूप बत्ती जला दिया कर, चंदन की एक बूंद टपका दिया कर, बस हो गया देव पूजन।
मित्रों,
यह कितने पैसे का हो गया? 1-2 पैसे का है। महीने भर में कितने का हो गया? 4 से लेकर 8 आने का चक्कर है। कोई खास बात नहीं है तो महाराज जी, इससे कौन प्रसन्न हो जाएगा?
बेटे, सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी, आपने तो बड़ा सस्ता तरीका बता दिया। इतने शक्तिशाली देवता, इतने सामर्थ्यवान देवता, इतने ज्ञानी देवता, इतनी कम चीजों से प्रसन्न हो जाएंगे, तब तो मैं हमेशा करता रहूंगा। हाँ बेटे, हमेशा करते रहना, कुछ फायदा हो जाएगा। कुछ खास फायदा नहीं हो सकता, तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे।
बेटे, मैं कुछ कह नहीं सकता। देवताओं से पूछ करके बताऊंगा कि वे कर्मकांडों के द्वारा प्रसन्न हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन कर्मकांडों के पीछे जो प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं, शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, अगर इनको आप धारण करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ, अपने सारे जीवन के अनुभव की साक्षी और शपथ खाकर कह सकता हूँ कि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न ही नहीं, आपके चरणों को चूमेंगे और आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आपसे मैं फिर से यह कहता हूँ कि इन कर्मकांडों के पीछे जो शिक्षाएं, जो प्रेरणाएं, जो दिशाएं भरी पड़ी हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वह सब मिलेगा जिसके कि आप अधिकारी हैं। अगर आप उन्हें नहीं समझेंगे तो फिर आप करते रहिए कर्मकांड। क्या मिलेगा?
कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ रहना पड़ेगा। कर्मकांड की प्रेरणाएं, मित्रों,
कर्मकांडों की क्या प्रेरणाएं हैं, क्या शिक्षाएं हैं, क्या दिशाएं हैं?
हम जल चढ़ाते रहते हैं, पाद्यम समर्पयामि, स्नान समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, इनका क्या मतलब है?
बेटे, जल नम्रता का प्रतीक है, सज्जनता का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, सरलता का प्रतीक है, सहजता का प्रतीक है,
आर्द्रता का, आंसुओं का प्रतीक है।
दूसरों के दैख और दर्द में हमारे आंसू आने चाहिए।
हमारी प्रकृति नम्र होनी चाहिए।
हमको जल की तरीके से शीतल होना चाहिए। हमारा स्वभाव और प्रकृति जल की तरीके से हो तो समझना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व उस जल की भांति है जो जल भगवान पर चढ़ाया जाता है। हम अपना व्यक्तित्व जल की तरीके से ठंडा, शीतल और नम्र बना करके विकसित करें तो हमको भगवान का प्यार मिल सकता है। जल के अंदर यही शिक्षा है।
मित्रों,
इसके अंदर एक और शिक्षा है।
हमारे पास पांच संपदाएं हैं।
ये पांचों की अनंत संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यदि हम इन पांचों का पालन करें तो हमें पूरा लाभ मिल जाएगा। पंचोपचार पूरा कर लें तो क्या मिल जाएगा?
तब हमें पांच संपदाएं मिल जाएंगी।
इन पांचों संपदाओं को हम भगवान के चरणों पर अर्पित करें ताकि वे पांचों सिद्धियों के रूप में, पांचों देवताओं के रूप में पुष्पित पल्लवित होकर के हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाएं। पांचों विभूतियों को आप बीज की तरीके से बोएं, जो बरगद की तरीके से, कल्पवृक्ष की तरीके से उगाएं। नहीं साहब, हम तो बीज बोएंगे नहीं तो आप पाएंगे भी नहीं, बोएगा नहीं तो पाएगा भी नहीं। इसलिए जो पांच चीजें भगवान ने हमारे पास दी हैं, उन पांचों चीजों को हम देवत्व के खेत में बोएं। देवता के खेत में, आदर्शवादिता के खेत में, भलमनसाहत के खेत में, लोकमंगल के खेत में अपनी विभूतियों को बोएं।
पहले बो फिर पाओ। मित्रों, संसार में जितने भी महामानव हुए हैं, जिनका स्वर्णिम इतिहास है, उन्होंने पहला काम यह किया है कि अपनी जो संपदाएं मिली हुई थी उनको बोया था।
किसके खेत में? देवत्व के खेत में। आप तो कंजूस के तरीके से, कृपण के तरीके से, चालाक के तरीके से, लोभी के तरीके से, स्वार्थी के तरीके से अपनी सब चीजों को दबाए बैठे हैं। उसमें से कुछ खर्च करना नहीं चाहते, किसी को अनुदान देना नहीं चाहते और बदले में न जाने क्या से चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता।
पहले बोइए फिर पाइए। मित्रों,
देवत्व के खेत में क्या बोना पड़ेगा?
एक तो बोना पड़ेगा जल।
जल से क्या मतलब है?
जल से मतलब है बेटे श्रम।
श्रम से मतलब है पसीना।
आप पसीना बहाए।
पसीने से क्या मतलब होता है?
इसका मतलब होता है कि मेहनत कीजिए, समय लगाइए।
आप अपना समय और श्रम उन कामों के लिए लगाए जो कि देवत्व की भूमिका अदा करने के लिए आवश्यक है।
आप अपना समय केवल स्वार्थ के लिए सीमित मत रखिए, पेट के लिए सीमित मत रखिए, औलाद के लिए सीमित मत रखिए।
आपका श्रम लोकमंगल के लिए भी लगाया जाना चाहिए।
आपका श्रम परमार्थ प्रयोजनों में भी संलग्न होना चाहिए।
जिसके लिए आप बार बार यह कहते रहते हैं कि हमें तो फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत उस काम के लिए नहीं मिलती जिसको आदमी बेकार समझता है, उपेक्षित समझता है। जिस कार्य को आदमी आवश्यक समझता है, उस काम के लिए हर तरह से समय निकलता है और करना शुरू कर देता है। आपकी उपेक्षा यह बताती है कि आपको लोकमंगल के लिए फुर्सत नहीं मिलती, सेवा कार्यों के लिए और भगवान के श्रेष्ठ काम के लिए फुर्सत नहीं मिलती। आप उपेक्षा में बेकार समय बिताते हैं।
आपको बहाना मिल जाता है कि फुर्सत नहीं मिलती,
समय व श्रम लगे लोकमंगल में।
इसलिए मित्रों,
आपको क्या करना चाहिए? अपना परिश्रम और अपना समय श्रेष्ठ कार्यों के लिए, मानवीय आदर्शों के लिए, इस दुनिया को सुंदर और सुसज्जित बनाने के लिए लगाना चाहिए। पसीना बहाने का यही अर्थ है।
भगवान को हम स्नान कराते हैं, स्नान समर्पयामि। किससे स्नान करा रहे हैं? एक चमची जल से।
अरे भाई,
पहले तो तू स्वयं एक चमची जल से नहा करके आ जरा, तब भगवान जी को स्नान कराना।
अरे साहब,
एक चमची से भगवान जी तो नहा भी लेते हैं। और आचमन संपर्यामी, बेटे तेरे मुंह पर जम रही है धूल, ले एक चमची जल से अपना मुंह धोकर तो दिखा। महाराज जी,
इतने पानी से तो मुंह नहीं धुलेगा, तो कितने से धुलेगा?
महाराज जी,
कम से एक लोटा तो होना ही चाहिए मुंह धोने के लिए, और भगवान जी का मुंह इतना छोटा है कि एक चम्मच जल से काम चल जाएगा, एक चम्मच में आचमन करा देगा।
एक चम्मच में पाद्यम समर्पयामी, पाद्य धो देगा।
एक चम्मच में स्नान करा देगा और एक चम्मच में सब काम करा देगा। ऐसा नहीं हो सकता बेटे, यही पसीने की बूंदों से ताल्लुक है और अपने श्रम को, अपने स्वभाव को नम्र, सरल, शीतल बनाने से ताल्लुक है। अगर आपने यह प्रकाश पाया हो, दिशाधारा पाए हो, तो आपके पंचोपचार का पहला चरण सही है, देवपूजन का पहला चरण सही है।
मित्रों, दूसरा वाला चरण है अक्षतान समर्पयामी, अक्षत सौंपिए।
अक्षत क्या है? अक्षत बेटे चावल है, और क्या, कितना सौंपूं? अच्छा यह बता कि दोपहर की रोटी खाता है तो कितने चावल में तेरा पेट भर जाता है?
महाराज जी, मैं तो जब एक बार पत्नी परोसती है तब ले लेता हूँ और दूसरी बार फिर ले लेता हूँ।
अच्छा, तो कितने चावल ले लेता है?
महाराज जी, 3/4 चावल तो मैं दोपहर को खा जाता हूँ और शाम को 3/4 शाम को भी खा जाता हूँ। 3/3 6/4 खा जाता है। कब?
जब संग में दाल भी लेता है, शाक भी लेता है और पूरी रोटी भी लेता है।
अगर मैं तुझे अकेला चावल ही खिलाऊं तो?
सारे दिन में तो केवल चावल 1.5 पाव से 1/2 किलो खा सकता हूँ, अगर आप दूसरी चीज दे तब। बेटे, भगवान जी तुझसे कितने बड़े हैं?
महाराज जी,
बहुत बड़े हैं। बड़े हैं तो उनको रोजाना कितना चावल खिलाया करेगा?
कम से 5 किलो चावल भगवान जी को रोज खिलाया कर। गणेश जी को पूजता है तो कम से 5 किलो लड्डू खिला।
उनका कितना बड़ा पेट है?
5 किलो कितने दाम का आएगा? इस समय यह 2.5-3 रुपये किलो है। 5x2.5 = 12.50 रुपये का चावल रोज गणेश जी को खिला। महाराज जी,
ऐसा तो नहीं करूँगा, भगवान के लिए लगाए कमाए।
मित्रों, अक्षतान समर्पयामी, नैवेद्यम निवेदयामी, इसका क्या मतलब है?
अक्षत का अर्थ है कि हम जो अनाज कमाते हैं।
पहले सब लोग अनाज कमाते थे, आज तो रुपये भी मिलते हैं। हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भगवान के लिए खर्च होना चाहिए। हमारा सारा का धन हमारे स्वयं के स्वार्थ में ही नहीं खर्च हो जाना चाहिए।
अध्यात्म की भाषा में यह चोरी है। आप अपना कमाएं, अपना खाएं।
कोई पुलिस आपको पकड़ नहीं सकती,
कोई इनकम टैक्स वाला पकड़ने नहीं आ सकता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि आप अपने लिए कमाते हैं और अपने लिए खाते हैं। कैवलाघो भवति कैवलादि, अर्थात जो अपने लिए कमाए और अपने लिए खाए वह चोर है।
इसलिए आपको अपनी जिंदगी को और अपनी संपत्तियों को साझेदारी की दुकान मानना चाहिए। यह भगवान के साथ साझेदारी की दुकान है,
इसमें से भगवान का हिस्सा भी हमको दे करके चलना चाहिए।
हमारी कमाई का एक अंश भगवान के लिए भी खर्च होना चाहिए। यह इस तरीके से खर्च होना चाहिए जैसे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर करते थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को 500 रुपये वेतन मिलता था।
उन्होंने 50 रुपये अपनी गृहस्थी के लिए सुरक्षित रखा और कहा कि हम गरीबी में जिएंगे और 50 रुपये में काम चलाएंगे।
450 रुपये महीने उन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सुरक्षित रखे और सारे बंगाल के, कलकत्ते के लोगों से कहा कि जिस विद्यार्थी के पास फीस न हो वह यहाँ से पैसे लेकर के जाए, जिस विद्यार्थी के पास मिट्टी का तेल न हो वह हमारे यहाँ से लेकर के जाए। मित्रों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इतनी गरीबी में पले थे कि वे सड़क के किनारे की लाइट में बैठकर पढ़ा करते थे।
मिट्टी के तेल का पैसा नहीं था, वे समझते थे कि गरीबी किसे कहते हैं, कंगाली किसे कहते हैं। इसलिए गरीबी और कंगाली में जी रहे बच्चों की सहायता के लिए उन्होंने निश्चय किया कि हम 50 रुपये में अपना गुजारा कर सकते हैं और 450 रुपये विद्यार्थियों के लिए लगा सकते हैं। आप तो अपनी कमाई का 500 रुपया भी खा जाते हैं और चोरी चालाकी का भी खा जाते हैं, फिर बेटे बात कैसे बनेगी?
आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम में लगाना ही चाहिए।
नहीं साहब, हम तो नहीं लगा सकते, तो फिर भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। आपकी भगवान की भक्ति केवल खिलौना है, विडंबना है, आडंबर है और ढोंग है।
इसलिए मित्रों,
क्या करना पड़ेगा?
अक्षतान समर्पयामी, अर्थात अपनी कमाई का एक अंश भगवान के काम में लगाइए। मित्रों,
श्रम के बारे में अभी अभी बता चुका हूँ और धन के बारे में अभी बता रहा था। आपके पास 5 चीजें हैं और पंचोपचार के माध्यम से आप इन 5ों को कोशिश कीजिए कि लोकमंगल के लिए, श्रेष्ठता के लिए, आदर्शवादिता के लिए इनमें से बड़े से अंशदान करना है। यह पंचोपचार अंशदान की शिक्षा है। पंचोपचार खिलौना नहीं है, ढोंग नहीं है, चालाकी नहीं है, हाथों की हेरा फेरी नहीं है। इसके पीछे यही प्रेरणा है कि आपके पास जो कुछ भी है उसका बड़े से अंश श्रेष्ठ कामों के लिए लगाएं।
दीपक का अर्थ है ज्ञान। मित्रों,
फूल क्या है और चंदन क्या है? चंदन, फूल और दीपक, ये तीन चीजें अभी और बाकी रह जाती हैं। चंदन का क्या अर्थ होता है और फूल का क्या अर्थ होता है,
इसको आपको जानना चाहिए। दीपक का अर्थ है ज्ञान।
आपकी जो समझ है, जो बुद्धि है, जैसे हमारे मस्तिष्क में ज्ञान रहता है, मस्तिष्क में दीपक के ऊपर ज्ञान की बत्ती, ज्योति जलती रहती है। प्यार से भरा हुआ हृदय और पात्रता से भरा हुआ कलेवर होता है। पात्र में दीपक होता है, उसके भीतर क्या होता है? स्नेह होता है, प्यार होता है, चिकनाई होती है।
चिकनाई को स्नेह प्यार कहते हैं।
दीपक जो हमारे ज्ञान का प्रकाश है, वह दूसरों के लिए भी खर्च होते रहना चाहिए और सदैव जलते रहना चाहिए। आप बुद्धिमान हैं, विचारशील हैं, आप जानकार हैं, आप ज्ञानी हैं, तो वह आपका ज्ञान केवल आपके पेट भरने के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। आप वकील हैं तो आपकी वकालत का ज्ञान गांधी जी के तरीके से असंख्यों को मिलना चाहिए।
आप अगर विद्वान हैं तो महर्षि व्यास के तरीके से आपके ज्ञान का लाभ असंख्यों को मिलना चाहिए।
नहीं साहब, अपने ज्ञान से हम फायदा उठाएंगे और अपनी वकालत करेंगे और अपना घर भरेंगे।
मित्रों,
यह अमानत है, भगवान की सौंपी हुई संपत्ति है। इसमें से कम से हिस्सा अपने लिए रखें और बड़े से हिस्सा समाज के लिए फैला दें, ताकि दुनिया में रोशनी होना संभव हो सके,
प्रकाश होना संभव हो सके।
आपने एम ए किया है तो एम ए
का ज्ञान समाज को मिलने दीजिए।
नहीं साहब, हम तो पेट भरने के लिए लगाएंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं साहब, हमारी आमदनी हमको मिलेगी और औरत की भी कमाई हम खाएंगे और चालाकी की कमाई भी खाएंगे, ईमानदारी की कमाई भी खाएंगे।
नहीं मित्रों,
ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अध्यात्मवादी हैं और आप देवताओं की कंपनी में भर्ती होना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देवता उन्हें कहते हैं जो दिया करते हैं। जिनकी नीयत हमेशा लेने की रहती है, इससे भी लेना चाहिए और देवता से भी लेना चाहिए।
मित्र भाई से भी लेना चाहिए, आचार्य जी से भी लेना चाहिए, गुरु से भी लेना चाहिए, पड़ोसी से भी लेना चाहिए,
सबसे लेना चाहिए, तो यह देवता नहीं लेवता है। जो दें सो देवता।
मित्रों, देवता की वृत्ति है कि वह गरीब से आदमी को भी मौका दे सकती है कि वह लोगों को निहाल कर सके और समाज को लाभान्वित कर सके। बिहार के हजारीबाग जिले में एक गरीब किसान था, बिना पढ़ा, कोई ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, लेकिन उसने अपने गांव में आम का एक बगीचा लगाया।
गांव वाले लोग आते और कहते कि हमको आम की केरी दीजिए, चटनी बनाएंगे।
हमको भी दीजिए, पेड़ पर पक्षियों को घोंसला बनाते हुए देखा।
गांव के किसानों को दोपहरी में पेड़ की छाया में बैठते हुए देखा।
रात के समय में जंगली जानवरों को, खरगोश को, लोमड़ियों को पेड़ के नीचे बैठते हुए देखा, तो वह गरीब किसान प्रसन्न हो गया कि मैंने एक धर्मशाला बना दी, अच्छा किया। मैंने अन्न क्षेत्र बना दिया, अच्छा किया। बस उस किसान ने गांव-गांव में बगीचे लगाना शुरू कर दिया।
दूसरों से भी प्रार्थना की, आप भी आम का बगीचा लगाए।
हजारी किसान सारी जिंदगी आम के बगीचे लगवाता रहा। मित्रों, जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो लोगों ने पाया कि उसने जहां तहां घूम घूमकर हजार बगीचे लगाए थे। हजारी उसका नाम था और उसने हजार बगीचे लगाए,
इसलिए लोगों ने उस इलाके का नाम हजारीबाग रखा। हजारीबाग जिला बिहार प्रांत में है। वे बगीचे हजारी किसान के स्मारक के रूप में उसी तरीके से हैं जैसे कि शाहजहां का स्मारक ताजमहल है। श्रम से भी आप ऐसा कर सकते हैं।
हमारे मथुरा शहर में आज से 50-100 वर्ष पहले एक स्त्री थी, पिसनहारी।
उसका असली नाम तो कोई नहीं जानता, पर वह पिसनहारी का काम करती थी।
12-13 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी।
ब्याह हुआ और थोड़े दिन में विधवा हो गई।
विधवा होने के पश्चात चक्की पीसने का धंधा उसने शुरू किया। दो आने 12 पैसे रोज की आटे की पिसाई लेती थी।
उसी से उसने अपनी जिंदगी काट ली। मंदी का जमाना था, सो कभी एक पैसा तो कभी दो पैसा बचत करती रही और जब बुद्धि हुई तो उसके पास खड़ा भरकर तांबे के जो पैसे जमा थे उसने गांव वालों को बुलाया और कहा कि इस पैसे को किसी अच्छे काम में लगा दीजिए।
मित्रों,
गांव वालों ने उस पैसे से कुआं बनवाया।
पिसनहारी का वह कुआं दिल्ली वाली सड़क पर मथुरा से 3-4 मील आगे है।
आप कभी जाएं तो पिसनहारी का कुआं तलाश करना। इतना ठंडा पानी, इतना मीठा पानी कि सारे इलाके में कहीं नहीं है। बीमारियों में उस पानी को लिया जाता है। अब वहां स्टैंड बन गया है, लोगों ने बगीचे लगा दिए हैं। बारात कहां ठहरेगी?
पिसनहारी के कुएं पर।
दोपहरी में विश्राम कहाँ करेंगे?
पिसनहारी के कुएं पर।
पिसनहारी का कुआं इतनी बड़ी धर्मशाला है, इतनी बड़ी चीज है कि मैं क्या कहा सकता हूँ। श्रम से भी आप चाहें तो लोकमंगल का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पैसा आपके पास न हो तो कोई बात नहीं,
हंसता हंसाता जीवन जिए। मित्रों,
पुष्प हंसता हुआ और हंसाता हुआ, खिलता हुआ और खिलाता हुआ रहता है। नम्र और कोमल, जिसने यह स्वीकार कर लिया है कि हम श्रेष्ठ के चरणों पर गिरेंगे, हम उन्हीं के चरणों के आसपास रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। बगीचे में रहे तो खिलते रहे और हंसाते रहे। जब उनके जीवन का अंत हुआ तो उनके गले में सुराख किया, उसे भी उसने मंजूर कर लिया।
माला बन करके, एकता के संगठन में एकत्र होकर के, किसी महामानव या भगवान के गले में जा विराजमान हो गए, श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों पर विराजमान हो गए।
आपका भी जीवन हंसता हुआ और हंसाता हुआ होना चाहिए,
खिलता खिलाता हुआ जीवन होना चाहिए। चंदन के तरीके से हमारा व्यक्तित्व ऐसा श्रेष्ठ होना चाहिए कि हमारे नजदीक जो कोई भी आए, सांप आए, बिच्छू आए, तरावट लेकर के जाए, हमारे मोहल्ले में उगे हुए झाड़ झंखाड़ हमारी ही तरीके से खुशबूदार बनते हुए चले जाएं।
जिन हाथों से चंदन घिसा जाए उन हाथों में सुगंध फैले,
जो लोग उसको जलाएं तो भी उनकी रूह को आनंद प्राप्त हो। आपका व्यक्तित्व चंदन जैसा होना चाहिए। मित्रों,
अगर आप देवत्व की सेना में भर्ती होना चाहते हो, देवता का पूजन करना चाहते हो, देवता का अनुग्रह पाना चाहते हो, आप दैवी जीवन जीना चाहते हो, दैवी संपदाओं के स्वामी बनना चाहते हो और वो विशेषताएं पाना चाहते हो जो सारी की देवताओं में होती हैं, तो आपको पंचोपचार की शिक्षाएं और प्रेरणाएं अपने जीवन में धारण करनी होंगी। देवताओं के पास सिद्धियां होती हैं, देवताओं के पास चमत्कार होते हैं, देवताओं के पास भुजबल होता है, देवताओं के पास सम्मान होता है, देवताओं के पास सब कुछ होता है। उस सब कुछ को पाना चाहते हो तो आपको देवता की पूजा उपासना, देवता की आराधना प्रारंभ करनी चाहिए, जैसी कि प्रत्येक अध्यात्मवादी को दूसरे पाठ के रूप में करनी पड़ी है और करनी चाहिए।
मित्रों,
मैंने गारंटी से आपको देवत्व का यह स्वरूप समझाया है। अगर आपने वह देवत्व प्राप्त नहीं किया है तो देवता अगर चाहें कि हम आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आपको लाभ देंगे, आपको वरदान देंगे, तो वे दे तो देंगे, लेकिन आप उससे कोई फायदा नहीं उठा सकते, लाभान्वित नहीं हो सकते।
सारे अनुदान वरदान बेकार चले जाएंगे। देवत्व के बिना नहीं मिलते अनुदान, कैसे बेकार चले जाएंगे? देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि पार्वती जी और शंकर जी आकाश मार्ग से बैल पर बैठकर चले जा रहे थे। शंकर जी का एक भक्त था, भक्त ब्राह्मण, उसकी स्त्री और एक बच्चा था। वे सारे दिन ओम नमः शिवाय का जप करते।
पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि ये हमारे भक्त लोग हैं, हम इधर से निकल ही रहे हैं, तो इन बेचारों को कुछ वरदान दे करके चलें।
शंकर जी ने कहा, पार्वती, बेकार है इनको वरदान देना। क्यों?
क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि इन्हें कुछ दिया जाए और वे उसे संभाल सकें। न तो इनमें पात्रता है और न ही संभालने की क्षमता है, इसलिए इनको वरदान देना बेकार है और हमारे लिए अपनी शक्तियों को खराब करने के बराबर है। ये सब खराब कर देंगे और बेचारे कुछ पाएंगे नहीं।
पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज जी,
आप तो ऐसे ही बहाने बना देते हैं, इन्हें कुछ देकर के जाए।
पहले आप इन्हें कुछ दें तो फिर पता चलेगा। अच्छा, देकर के चलेंगे। तीनों वरदान मांगने को तैयार हो गए कि हम अपनी मनोकामना पूरी कराएंगे। स्त्री जरा समझदार थी, होशियार थी, सबसे पहले उछलकर वह आगे आ गई और बोली, पहले हमारी मनोकामना पूरी कीजिए।
शंकर जी ने पूछा कि तुम्हारी मनोकामना क्या है?
उसने कहा, भगवन,
हमें 20 साल की खूबसूरत युवती बना दीजिए।
शंकर जी ने तथास्तु कहकर जल छिड़क दिया।
बस वह ऐसी खूबसूरत हो गई कि अगर सिनेमा की कंपनी में कोई ब्रांड निकलते तो उसी का नाम आए, बिल्कुल टिप टॉप।
ब्राह्मण ने उसे देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, अच्छा, कल तक तो कहती थी कि तुम्हारे साथ सती हो जाऊंगी और प्रतिभक्ति दिखाऊंगी,
आज क्या हुआ?
मुझे और बच्चे को भूल गई। ब्राह्मण की बारी आई वरदान मांगने की। ब्राह्मण ने शंकर जी से कहा, भगवन, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि इस स्त्री को शुकरी बना दीजिए। शंकर जी ने कहा, अच्छी तरह सोच लो। उसने कहा, महाराज जी,
मैंने सोच विचार कर ही वर मांगा है।
तथास्तु कहते हुए शंकर जी ने जल छिड़का और वह नारी से शुकरी बन गई। बालक यह सारा दृश्य देखकर रोने लगा।
शंकर जी ने कहा, तुम क्यों रोते हो?
तुम भी वरदान मांग लो। बच्चे ने कहा, भगवन,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी माँ को पहले जैसी बना दें।
मुझे मेरी माँ चाहिए। शंकर जी ने कहा, तथास्तु, और ब्राह्मणी पुनः शुकरी से पहले जैसी स्थिति में आ गई। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, देवी, देखा आपने, इन तीनों ने तीन वरदान व्यर्थ गंवा दिए। ये तीनों चाहते तो विवेकपूर्ण वरदान प्राप्त कर सकते थे और अपना जन्म और जीवन सुधार सकते थे।
हम इसीलिए आपसे कह रहे थे कि इनमें वरदान प्राप्त करने की पात्रता नहीं है।
मित्रों, देवपूजन का अर्थ होता है देवता की तरह अपने को विकसित कर लेना, ताकि देवता का जो स्तर है उसके साथ जुड़ी जो विशेषताएं हैं वे हमको मिलती चली जाएं। पात्रता का विकास करना ही देवपूजन का मुख्य उद्देश्य है।
देवता बनकर ही देवोपासना की जाती है।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।